सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हमारी चर्चा का विषय है पश्चिम एशिया संकट, प्रमुख घटनाक्रम और ऊर्जा आपूर्ति पर प्रभाव। इस महत्वपूर्ण विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व एम्बेसडर प्रभु दयाल। एम्बेसडर दयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एम्बेसडर दयाल, अभी जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, लगभग डेढ़ महीना हो गया है। अभी हम एक सीज फायर के दौर से गुजर रहे हैं, एक सप्ताह और बचा है सीज फायर का। आप हमें बता सकते हैं कि अभी आपको क्या संभावनाएं उभरती नजर आ रही हैं? जो पहला चरण था 21 घंटे का अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का इस रविवार को, उसका कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। आपको क्या लगता है इस एक सप्ताह में और क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और अभी कैसे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है?
देखिए, जो वो वार्ता का पहला दौर था उसमें तो कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों साइड्स की जो पोजीशंस थी वो बहुत दूर दूर रही एक दूसरे से। लेकिन अब दूसरा राउंड हो रहा है तो दुनिया की उम्मीदें इस पे टिकी हैं कि शायद कोई नतीजा निकल पाए। मुश्किल ये है कि दोनों पक्षों के जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे हैं। जो ईरान चाहता है वो अमेरिका को मंजूर नहीं है और इसी तरह जो अमेरिका चाहता है वो ईरान को मंजूर नहीं है। सबसे बड़ी अड़चन ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको लेकर सामने आ रही है। और देखिए, उम्मीद है अगर दोनों साइड बात करने के लिए राजी हुई है दोबारा, ये अच्छी बात है और शायद किसी तरह से ये जो फासले बने हैं उनकी पोजीशंस में ये दूर होंगे तो अच्छा होगा। जो कुछ ईरान की कंडीशंस थी वो मुझे लगा कि शायद ये बार्गेनिंग के लिए थी कि इतने एक्सट्रीम पोजीशन कि कोई मिडवे पोजीशन अगर निकल आए, मिडवे सोल्यूशन तो अच्छा होगा। ईरान का जान और माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि कुछ ईरान ने नुकसान पहुंचाया गल्फ कंट्रीज को और इसराइल को, लेकिन ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये उम्मीद है कि अब ये नुकसान होना बंद हो, किसी तरह से लड़ाई खत्म हो, कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ अग्रीमेंट हो जाए।
जी बिल्कुल। हालांकि हम प्रत्यक्ष तौर से इस युद्ध से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज जो अंतर मंत्रीय प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें जो अभी लेटेस्ट डिप्लोमेटिक आउटरीच हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज, यस्टरडे एज यू नो प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। The two leaders reviewed the substantial progress achieved in India-US bilateral cooperation. Both sides remain committed to further strengthening a comprehensive global strategic partnership in all areas of cooperation. The two leaders also discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure. Yesterday, External Affairs Minister spoke with the Foreign Minister of Israel and discussed various aspects of the conflict in West Asia. He also spoke with the Foreign Minister of Australia, where the two leaders shared views on the conflict in West Asia.
एम्बेसडर दयाल, जो भारत का डिप्लोमेटिक आउटरीच है सभी देशों के साथ कुछ इस स्थिति का हल निकालने की ओर, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? और जो मीटिंग हुई है, जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच, ये कितना आपको एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट लगती है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पर फिर से नेविगेशन खुले और सुरक्षा बहाल हो?
देखिए, गौरतलब बात यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये टेलीफोन कॉल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो वेस्ट एशिया में टेंशन्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और इन टेंशन्स से जो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी है उस पे बड़ा बुरा प्रभाव हो रहा है। जो इस बातचीत में फोकस रहा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के विषय में था, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है, इसको चोक पॉइंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत के करीब 25% जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उससे भी ज्यादा कुछ जो इम्कान लगाए जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 40% जो भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं इधर से आते हैं। और ये देखिए, अगर इसमें कोई डिसरप्शन होता है, इन सप्लाईज में, तो हमारी जो एनर्जी स्टेबिलिटी है उस पे बड़ा नुकसान होता है उसका। तो ये जो कॉल थी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी हमारे प्रधानमंत्री जी को, ये एक दिन बाद की उन्होंने, जब उन्होंने ब्लॉकेड अनाउंस किया था ईरान के पोर्ट्स का। तो इससे जो संकेत मिला वो ये कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये ब्लॉकआउट का जो फॉलआउट है उसको कम किया जाए और जो रीजनल एस्केलेशन हो रहा है वो ना हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत देशों के साथ बातचीत की है, कॉन्टैक्ट बनाए हैं इसी वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो और ये लड़ाई थमे, खत्म हो और जो लाइफ है वो पूरी नॉर्मल हो, क्योंकि सब दोस्तों देशों का बहुत नुकसान हो रहा है इस वेस्ट एशियन वॉर से।
जी, सो हम जो मौजूदा ब्लॉकेट के बारे में सुन रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिका की तरफ से है, उसका क्या असर पड़ रहा है? जो भारत शिप्स हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से आ पा रहे थे फरवरी 28 के बाद, भी वही स्थिति बनी रहेगी या थोड़ी और बेहतर होगी?
हमारे कुछ जहाज तो आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की उनको इजाजत मिली है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी जो नेवी है वो हमारे जहाजों को उनकी सहायता करके, उनको स्कॉर्ट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकाल रही है और इस वजह से हमारे कुछ जहाज आ पाए हैं। ईरान ने कहा है कि वो हमारे जहाजों को नहीं रोकेगा
जी।
और इसी वजह से शायद हमको परमिशन मिलती रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी हमारे बहुत जहाज अभी भी फंसे हैं और पूरी कोशिश चल रही है कि किस तरह से इनको अब बाहर लाया जाए ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ठीक से मीट हो।
जी बिल्कुल, हम जब से कोविड आया तो हमारे सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक मिशन है वो शुरू किया, उस संदर्भ में अगर हम तेल और गैस की बात करें तो जो रणनीतिक निर्णय है कि जो प्रोक्योरमेंट है देश जिनसे हम खरीदते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, 11 वर्षों में हम देखें तो 27 देशों से पहले हम खरीदते थे, अब हम 41 देशों से खरीद रहे हैं एनर्जी सोर्सेज, और हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा, और इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वहां से जनरेशन बढ़ाना, ये कितने इम्पोर्टेंट है जो आप डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं इम्पोर्ट्स पर, उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए?
पर्शियन गल्फ रीजन पे हमारी डिपेंडेंस को कम करने के लिए भारत ने अब अनेक देशों से ऑयल और गैस खरीदना शुरू किया है और इनमें से बहुत से देश अफ्रीका में है। अब जैसे नाइजीरिया और अल्जीरिया बहुत महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव सप्लायर्स के रूप में सामने आए हैं, वहां से हम क्रूड ऑयल लेते हैं और एलपीजी लेते हैं। देखिए अल्जीरिया में जो वहां की कंपनी है जिसका नाम है सोनाट्रैक, वो एक बहुत बड़ी एलपीजी की सप्लायर के रूप में हमारे लिए आई है सामने। इसके अलावा देखिए हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो ऑयल और एलएनजी क्षेत्र में मोजाम्बिक में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि मोजाम्बिक के पास भी ऑयल एंड गैस है, वहां से गैस लाने की और ऑयल लाने की कोशिशें चल रही हैं। और इसके अलावा देखिए एंगोला जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट देश के रूप में सामने आया है जहां से हम गैस लेते हैं। और इस तरह से देखो वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, और हमारी जो एनर्जी डिप्लोमेसी है वो इस क्षेत्र में बहुत फोकस कर रही है। अब आपने जिक्र किया था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का, देखिए भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। अभी तक जो ये स्ट्रेटेजी थी वो ये कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो लगभग 10 दिन के लिए चाहिए थे होती थी, उनके हमारे पास पूर्ति होती थी, लेकिन अब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम कम से कम 30 दिन के लिए हमारे रिजर्व्स काफी हो, जो हमें जरूरतें हो वो 30 दिन के हम पूरी कर सके, इतने रिजर्व्स हों। और इस वजह से हर तरह से ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा के या इम्पोर्ट बढ़ा के यही कोशिश हो रही है कि जो हमारी रिजर्व कैपेसिटी बढ़े तो हमको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए।
एम्बेसडर दयाल, रशिया से जो हम क्रूड लेते रहे हैं पिछले सालों में उसको लेकर क्या स्थिति है और ये कितना इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए?
रशिया देखिए हमारी तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं
जी,
हम लगभग अपने रिक्वायरमेंट्स के 85-90% क्रूड के रिक्वायरमेंट्स इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर दिक्कतें आती हैं तो कीमत बढ़ती है, और ये कहा जाता है कि अगर $10 पर बैरल कीमत बढ़ती है ऑयल प्राइसेस की तो उससे 13 से 14 बिलियन हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता है। तो जो ऑयल कॉस्ट के बढ़ने से जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ये बढ़ता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका असर होता है। तो इस वजह से हर कोशिश है कि जो भी वेवर पहले हमको दिए गए थे वो और बढ़ जाएं और रशियन कंपनी से हम ऑयल खरीदते रहें और सैंक्शंस अमेरिका ना लगाए, बातचीत मेरे ख्याल से इस पे होनी जरूरी होगी।
और एक और पक्ष रहा है सरकार का कि उन्होंने पूरे देश को साथ में लिया है, रेगुलरली गवर्नमेंट अपडेट्स आते हैं जिनके द्वारा सिचुएशन को समझाया जाता है ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या अफवाहें हैं उससे लोग द्रवित ना हो और जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है सप्लाई बरकरार है, प्राइसेस में स्टेबिलिटी है अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें। सो आज जो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सुजाता शर्मा, उन्होंने जो जानकारी दी सीएनजी प्रबंधन को लेकर, आइए उसके बारे में सुनते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते भारत की एनर्जी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई, किंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए और जिसके चलते डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है। इस सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एटसेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि केरोसिन और कोल को भी ऑफर किया गया है।
ये जो प्रबंधन है सरकार का, विभिन्न टारगेटेड स्टेप्स लिए गए हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और लगातार जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ये कितना इम्पोर्टेंट है विश्वास बनाए रखने के लिए?
ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि पब्लिक में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, अलग अलग जो सोर्सेज से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है पब्लिक को गुमराह करने के लिए, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना बहुत अच्छा होता है और पब्लिक को काफी रिलीफ मिलता है इससे ये जान के कि देखिए सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और जो हमारी जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो इस दिशा में कि ये हमारी दिक्कतें बढ़े ना बल्कि काबू में आए। और इस वजह से देखिए जो कई जो अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेस हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाईज, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे ताकि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी हमारी कम हो। हमारे टारगेट जो है हम बहुत बढ़ा रहे हैं इसमें, और जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सब पे बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हमारी जो खुद देश की बढ़ती जरूरतें हैं वो ठीक से पूरी होती रहे।
और एम्बेसडर दयाल, ये भी जो एक चेष्टा की जा रही है कि एलपीजी से जहां तक हो सके लोग पीएनजी की तरफ शिफ्ट हो, जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहले एक रेजिस्टेंस होती थी लोगों को, शायद एलपीजी लगता था कि एक आपके सामने सिलेंडर है तो ज्यादा विश्वास होता था। तो आपको लगता है कि ये शायद एक सिल्वर लाइनिंग होगी कि ज्यादा एडॉप्शन होगी पाइप नेचुरल गैस की जो हमारे लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध है हमारे देश के लिए?
हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इसने कई ऐसे ऑर्डर्स इश्यू किए हैं जिससे एनर्जी कंजम्पशन और सप्लाई स्टेबिलिटी भारत में बनी रहे, और इनमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं ट्रांजिशन को एलएनजी से पीएनजी का, पीएनजी जो मतलब पाइप नेचुरल गैस, वो उस पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि उससे काफी कुछ ये जो स्थिति है ये कंट्रोल में बनी रही है। इसी वजह से अब ये कोशिश है कि हमारी जो पीएनजी की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाए और इस पे प्रायोरिटी भी दी जा रही है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर दयाल, आप शामिल हुए इस डिस्कशन में और आपने पश्चिम एशिया संकट के प्रमुख घटनाक्रम और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
सुर्खियों में